एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट
और मैं हूं आपका साथी वक्ता। आज हम बात करें एक बहुत ही दिलचस्प किताब के बारे में, मार्कस जोशी की मैथमेटिकल फाइनेंस।
हाँ, ये नाम सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि अरे ये तो बहुत भारी भरकम गणित की बात होगी, पर सच तो ये है कि ये हमारी रोजमर्रा की फाइनेंशियल दुनिया से बहुत गहराई से जुड़ी है।
बिल्कुल, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बातें सुनते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, लोन्स, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं गणितीय मॉडल काम कर रहे होते हैं।
और खासकर डेरिवेटिव्स की दुनिया, जैसे स्टॉक ऑप्शंस या फ्यूचर्स, वो तो पूरी तरह इसी गणित पर आधारित है।
तो ये समझना कि इनकी कीमत कैसे तय होती है, ये बहुत जरूरी है।
ये है कि वो सिद्धांत और असल दुनिया के इस्तेमाल, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच एक पुल बनाती है।
तो चलिए इसी पुल पर चलकर देखते हैं।
और इस सफर में हमारे गाइड हैं खुद लेखक स्वर्गीय डॉक्टर मार्क एस जोशी। उनके बारे में जानना भी जरूरी है ना?
जी बिल्कुल। डॉक्टर जोशी 1969-2017 का प्रोफाइल काफी अनोखा था। एक तरफ तो सोचिए, ऑक्सफोर्ड से गणित में पीएचडी, कैम्ब्रिज में फेलो, मतलब गणित की गहरी समझ,
एकदम अकादमिक गहराई।
हाँ, लेकिन वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कई साल रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसी बड़ी जगहों पर बतौर सीनियर क्वांटिटेटिव एनालिस्ट काम किया, मतलब वो क्वांट थे।
अच्छा, क्वांट्स, ये वही लोग हैं जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स यूज करते हैं?
बिल्कुल, जो असल दुनिया की ट्रेडिंग की समस्याओं के लिए गणितीय मॉडल बनाते हैं, उन्हें टेस्ट करते हैं, लागू करते हैं। तो जोशी जी के पास थ्योरी भी थी और प्रैक्टिकल अनुभव भी, जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ये।
और यही चीज उनकी लिखाई में दिखती है। वो सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले नहीं बताते,
नहीं, वो ये भी सोचते थे कि क्या ये फॉर्मूला कंप्यूटर पर ठीक से चलेगा, क्या इसे इस्तेमाल करने वाले जैसे ट्रेडर या रिस्क मैनेजर समझ पाएंगे,
मतलब प्रैक्टिकल बातें।
हाँ बिल्कुल, वो एकेडमिक दुनिया की बारीकियों और ट्रेडिंग फ्लोर के भागदौड़ दोनों को समझते थे और उनके बीच एक कनेक्शन बनाते थे। उनकी खूबी थी मुश्किल चीजों को साफ तरीके से समझाना।
तो अब आते हैं किताब पर, मैथमेटिकल फाइनेंस।
हाँ।
इसका असल मकसद क्या है, ये किसे पढ़नी चाहिए?
देखिए, ये कोई फटाफट अमीर बनने की गाइड नहीं है, ये एक तरह का टूलकिट है, एक सोचने का फ्रेमवर्क।
अच्छा।
इसका मकसद है किसी ऐसे इंसान को जिसकी मैथ्स में थोड़ी पकड़ है, उसे तैयार करना ताकि वो मॉडर्न फाइनेंस के जो जटिल मॉडल्स हैं उन्हें समझ सके, बना सके और यहाँ तक कि उनकी आलोचना भी कर सके, मतलब एक काबिल क्वांट बना सके।
तो ये ट्रेडिंग टिप्स नहीं बल्कि दिमाग को तेज करने वाले औजार देती है। इसका सबसे अहम केंद्रीय विचार क्या है, वो कौन सी एक बुनियाद है जिस पर ये पूरी किताब टिकी है?
वो बुनियाद है एक बहुत ही सरल पर गहरा सिद्धांत, नो आर्बिट्राज।
नो आर्बिट्राज
मतलब बिना किसी जोखिम के पक्का मुनाफा कमाने का कोई मौका बाजार में लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अगर ऐसा कोई फ्री लंच है तो लोग तुरंत उसका फायदा उठाएंगे और वो मौका खत्म हो जाएगा।
अच्छा, ये तो सुनने में कॉमन सेंस जैसा लगता है।
हाँ लगता है, पर यही कॉमन सेंस पूरे क्वांटिटेटिव फाइनेंस की, खासकर डेरिवेटिव प्राइसिंग की नींव है। जोशी उसी सिद्धांत से शुरू करते हैं
और फिर वो बताते हैं कि डेरिवेटिव की कीमत कैसे तय होती है। और ये तरीका थोड़ा चौंकाने वाला है ना, मतलब ये भविष्य का अंदाजा लगाना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ा आइडिया है। कीमत तय होती है रेप्लिकेशन से, मतलब नकल करने से।
नकल? किसकी नकल?
डेरिवेटिव के पेमेंट की नकल। मान लीजिए एक स्टॉक ऑप्शन है, जोशी दिखाते हैं कि आप आज ही उसी स्टॉक को और कुछ रिस्क फ्री बॉन्ड जैसे सरकारी बॉन्ड को खरीद बेचकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
हाँ।
जिसका फायदा या नुकसान भविष्य में चाहे कुछ भी हो, ठीक उस ऑप्शन के फायदे या नुकसान जैसा ही होगा।
हूबहू। अच्छा, मतलब आपने एक तरह से उस ऑप्शन की फोटोकॉपी बना ली स्टॉक और बॉन्ड का इस्तेमाल करके।
बिल्कुल सही, एकदम सही उपमा है। अब सवाल यह है कि इस फोटोकॉपी को बनाने में आज आपकी लागत कितनी आई? बस वही लागत उस ऑप्शन की सही आर्बिट्रेज फ्री कीमत होनी चाहिए।
समझ गई। अगर ऑप्शन बाजार में उससे सस्ता या महंगा मिल रहा है तो फिर वो नो आर्बिट्रेज वाली बात गलत हो जाएगी, कोई ना कोई बिना रिस्क के पैसा कमा लेगा।
पावरफुल गणितीय दुनिया में ले जाता है, जिसे कहते हैं रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग।
हाँ, ये नाम मैंने सुना है, रिस्क न्यूट्रल, मतलब जोखिम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता?
लगता है। ये एक काल्पनिक दुनिया है जहां हम मान लेते हैं कि निवेशकों को रिस्क लेने या ना लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिस्क के प्रति उदासीन है, न्यूट्रल है।
लेकिन असल दुनिया में तो ऐसा नहीं होता, लोग तो रिस्क से बचते हैं।
सही बात है, लेकिन गणितीय रूप से इस काल्पनिक दुनिया में कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है
क्या
कि इस काल्पनिक रिस्क न्यूट्रल दुनिया में जो कीमत निकलती है वो नो आर्बिट्रेज सिद्धांत के कारण असली दुनिया की कीमत के बराबर ही होती है।
अरे वाह, ये तो सचमुच गणित का जादू है,
है ना। ये किताब इसी सफर पर ले जाती है। शुरू करती है बहुत सिंपल मॉडल से जिसे द्विपद मॉडल कहते हैं,
या नीचे।
हाँ बिल्कुल, एक कदम में। फिर वो धीरे धीरे गणितीय औजारों को पेश करती है, जैसे स्टोकेस्टिक कैलकुलस। ये वो गणित है जो लगातार बदलती रैंडम कीमतों को समझने में मदद करता है।
अच्छा, जैसे स्टॉक मार्केट में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं।
बिल्कुल। और फिर इन औजारों का इस्तेमाल करके किताब हमें सबसे मशहूर मॉडल तक ले जाती है, ब्लैक स्कोल्स मॉर्टन मॉडल।
और फिर आगे?
फिर वो बताती है कि जब सीधे फॉर्मूले काम ना करें तो कंप्यूटर की मदद से कीमत कैसे निकालें, यानी संख्यात्मक तरीके, न्यूमेरिकल मेथड्स। और आखिर में ब्याज दर, डेरिवेटिव्स जैसे एडवांस टॉपिक्स को भी छूती है।
तो चलिए कुछ हिस्सों को थोड़ा और खोलते हैं। सबसे पहले वो द्विपद मॉडल, वो सरल दुनिया।
हाँ, ये समझने के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए एक स्टॉक आज 100 रुपए का है, अगले कदम में वो या तो 110 का होगा या 90 का।
ठीक है,
चाहिए।
अंदाजा लगाना मुश्किल है,
यही रेप्लिकेशन काम आता है।
जोशी दिखाते हैं कि आप आज ही स्टॉक का कुछ हिस्सा खरीद कर और कुछ पैसा उधार लेकर या बॉन्ड बेचकर एक ऐसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं।
हाँ, जिसकी वैल्यू अगले कदम में चाहे स्टॉक 110 हो या 90, ठीक उस ऑप्शन की वैल्यू यानी 1 रुपए या 100 रुपए के बराबर होगी।
अच्छा, मतलब हर हाल में पोर्टफोलियो ऑप्शन की पेमेंट को मैच करेगा।
बिल्कुल। तो उस पोर्टफोलियो को आज बनाने की जो लागत है वही उस ऑप्शन की नो आर्बिट्राज कीमत है, कोई अंदाजे की जरूरत नहीं।
और यहीं पर वो रिस्क न्यूट्रल वाली बात भी आती है।
हाँ, इस मॉडल में हम कुछ खास संभावनाएं निकालते हैं जिन्हें रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये असली संभावनाएं नहीं होती बल्कि गणितीय गणना के लिए बनाई जाती हैं। इस काल्पनिक दुनिया में स्टॉक का अपेक्षित रिटर्न रिस्क फ्री रेट के बराबर होता है।
और फिर इस एक कदम वाले मॉडल को कई सारे कदमों तक बढ़ा सकते हैं।
जी हाँ, उसे डायनामिक हेजिंग का कॉन्सेप्ट आता है, मतलब आपको हर कदम पर अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते रहना पड़ता है ताकि वो ऑप्शन की नकल करता रहे।
ठीक है, लेकिन असली दुनिया तो इतनी सिंपल नहीं है, कीमतें तो लगातार बदलती हैं छोटे छोटे रैंडम कदमों में।
सही कहा, यहीं पर जरूरत पड़ती है स्टोकेस्टिक कैलकुलस की। ये वो गणित है जो लगातार होने वाले रैंडम बदलावों को डील करता है।
इसमें वो ब्राउनियन मोशन जैसी चीजें आती हैं।
हाँ, ब्राउनियन मोशन जैसे पानी में परागकणों की टेढ़ी मेढ़ी चाल। स्टॉक कीमतों की चाल को अक्सर इसी तरह मॉडल किया जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी टूल है ईटो का लेमा।
ये क्या करता है?
आसान भाषा में अगर आपको पता है कि कोई चीज जैसे स्टॉक प्राइस रैंडम तरीके से कैसे बदल रही है तो ईटो का लेमा आपको बताता है कि उस चीज पर निर्भर कोई दूसरी चीज जैसे ऑप्शन प्राइस कैसे बदलेगी। ये एक तरह का चेन रूल है रैंडम प्रोसेसेस के लिए। ये आगे के सारे मॉडल्स के लिए बेहद जरूरी है।
और इसी ईटो के लेमा और नो आर्बिट्रेज को मिलाकर हम पहुंचते हैं सबसे फेमस मॉडल पर, ब्लैक स्कोल्स मर्टन।
बिल्कुल, इससे एक समीकरण इक्वेशन निकलती है जिसे ब्लैक स्कोल्स पीडीई कहते हैं। ये एक मास्टर इक्वेशन है जो बताती है कि कुछ मान्यताओं के तहत किसी भी डेरिवेटिव की कीमत समय और स्टॉक प्राइस के साथ कैसे बदलनी चाहिए।
और इसका कोई सीधा हल भी है?
हाँ, सामान्य यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन के लिए इसका एक बंद रूप समाधान क्लोज्ड फॉर्म सॉल्यूशन है, वही मशहूर ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको सीधे ऑप्शन की कीमत बता देता है। अगर आपको स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी तक का समय, ब्याज दर और सबसे जरूरी अस्थिरता, वॉलिटिलिटी पता हो।
अस्थिरता मतलब कीमत में कितना उतार चढ़ाव है।
एग्जैक्टली, ये सबसे मुश्किल इनपुट होता है पता करने के लिए।
और यहीं पर वो ग्रीक्स भी आते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो।
जी हाँ, ये ग्रीक्स बताते हैं कि ऑप्शन की कीमत इन अलग अलग फैक्टर्स के बदलने पर कितनी संवेदनशील है। जैसे डेल्टा बताता है कि स्टॉक प्राइस 1 रुपए बदलने पर ऑप्शन की कीमत कितनी बदलेगी।
अच्छा, तो ये रिस्क समझने में मदद करते हैं।
बिल्कुल, ट्रेडर्स और रिस्क मैनेजर्स इनका रोज इस्तेमाल करते हैं अपने पोर्टफोलियो के जोखिम को नापने और उसे मैनेज करने के लिए। जैसे डेल्टा हेजिंग, मतलब स्टॉक खरीद बेचकर अपने पोर्टफोलियो के डेल्टा को शून्य के करीब रखना ताकि स्टॉक प्राइस के छोटे बदलावों से ज्यादा फर्क ना पड़े।
लेकिन ये ब्लैक स्कोल्स फॉर्मूला हमेशा काम करता है? इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी?
बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इसकी कई मान्यताएं हैं जो असल दुनिया में पूरी तरह सही नहीं होती। जैसे ये मानता है कि अस्थिरता, वॉलिटिलिटी, स्थिर रहती है, ब्याज दरें स्थिर रहती हैं, स्टॉक प्राइस में अचानक बड़े जंप नहीं आते।
तो जब ये मान्यताएं टूटती हैं या डेरिवेटिव्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तब क्या करते हैं?
तब हमें जरूरत पड़ती है संख्यात्मक तरीकों की, न्यूमेरिकल मेथड्स। ये कंप्यूटर आधारित तरीके हैं जो उन जटिल समीकरणों को हल करते हैं जिनका सीधा फॉर्मूला नहीं होता।
जैसे कि
एक बहुत पॉपुलर तरीका है मोंटे कार्लो सिमुलेशन। इसमें कंप्यूटर हजारों लाखों बार स्टॉक प्राइस के भविष्य के संभावित रास्ते पाथ्स सिमुलेट करता है, मतलब बनाकर देखता है।
अच्छा, जैसे पासा फेंक कर देखते हैं कि क्या क्या आ सकता है, वैसा कुछ?
हाँ, कुछ वैसा ही। हर संभावित रास्ते के आखिर में ऑप्शन का पेमेंट क्या होगा ये कैलकुलेट किया जाता है। फिर इन सभी पेमेंट्स का औसत निकालकर उन्हें आज की वैल्यू में डिस्काउंट करके कीमत का अनुमान लगाया जाता है।
और दूसरा तरीका?
दूसरा है फाइनाइट डिफरेंस मेथड्स। ये उस ब्लैक स्कोल्स पीडी जैसे समीकरणों को सीधे ग्रिड पर हल करने की कोशिश करता है। ये समय और प्राइस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है और फिर कदम दर कदम पीछे जाते हुए आज की कीमत निकालता है। ये खासकर अमेरिकन ऑप्शंस के लिए उपयोगी है जिन्हें एक्सपायरी से पहले कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो किताब इन प्रैक्टिकल तरीकों पर भी ध्यान देती है?
हाँ, जोशी जी का फोकस हमेशा थ्योरी और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दोनों पर रहता था। किताब आगे ब्याज दर डेरिवेटिव्स की भी बात करती है। ब्याज दरों को मॉडल करना और भी मुश्किल होता है।
क्यों?
क्योंकि ब्याज दरें स्टॉक प्राइस की तरह पूरी तरह रैंडम नहीं होती, वो अक्सर एक औसत लेवल की तरफ वापस खींचती हैं, मीन रिवर्जन, और वो सीधे सीधे खरीदी बेची जाने वाली चीज भी नहीं है। तो उनके लिए अलग तरह के मॉडल चाहिए, जैसे वासीसेक या CIR मॉडल।
और फिर एग्जॉटिक ऑप्शंस, मतलब और भी जटिल वाले।
हाँ, जैसे एशियन ऑप्शन जिसका पेमेंट औसत प्राइस पे निर्भर करता है, या बैरियर ऑप्शन जो तभी एक्टिवेट होता है जब प्राइस किसी लेवल को छूता है। इनके लिए भी खास तरीके चाहिए होते हैं।
तो इस पूरी गणितीय यात्रा से क्या कुछ मुख्य संदेश हैं जो हमें याद रखने चाहिए?
मेरे ख्याल से सबसे पहला और सबसे जरूरी संदेश है, नो आर्बिट्रेज का सिद्धांत ही फाइनेंस का आधार है। सारी प्राइसिंग इसी एक विचार पर टिकी है।
ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा?
दूसरा जो मुझे बहुत काउंटर इंट्यूटिव लेकिन पावरफुल लगता है, कीमत तय करना नकल करना है, भविष्यवाणी करना नहीं। क्वांट फाइनेंस भविष्य बताने की कोशिश नहीं करता, वो तो बस दिए गए भविष्य के पे ऑफ को आज ही रिप्लिकेट करने की लागत निकालता है।
ये बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। तीसरा क्या होगा?
रिस्क न्यूट्रलिटी की गणितीय ताकत और सुंदरता। ये कमाल का औजार है। एक काल्पनिक दुनिया में जाकर मुश्किल समस्याओं को आसान बना देना, ये गणित का जादू है।
चौथा संदेश,
सिद्धांत और व्यवहार का संतुलन। जोशी जी बार बार इस पर जोर देते हैं, गणित कितना भी एलिगेंट क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिकल नहीं है, कंप्यूटर पे एफिशिएंटली नहीं चलता, तो वो बेकार है।
और पांचवा?
मॉडल की सीमाओं को समझना। कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता, वो हकीकत का एक सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है। ये जानना कि आपका मॉडल कब फेल हो सकता है उतना ही जरूरी है जितना ये जानना कि वो काम कैसे करता है। मॉडल रिस्क हमेशा रहता है।
बिल्कुल। और शायद छठा ये कि गणित ही मॉडर्न फाइनेंस की भाषा है, इसके बिना आप इस फील्ड को गहराई से नहीं समझ सकते।
सही कहा, ये सिर्फ टूल नहीं, ये वो भाषा है जिसमें फाइनेंस सोचा और बोला जाता है।
किताब में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो इन संदेशों को और पुख्ता करती हैं, जैसे जोशी का ये मानना कि सबसे परिष्कृत गणितीय मॉडल भी बेकार है अगर उसे भरोसेमंद तरीके से लागू ना किया जा सके या उन लोगों को समझाया ना जा सके जिन्हें उसे इस्तेमाल करना है।
हाँ, ये प्रैक्टिकलिटी पर जोर देता है। सिर्फ स्मार्ट होना काफी नहीं, आपका काम उपयोगी भी होना चाहिए।
और ये कि नो आर्बिट्रेज सिर्फ गणित की कल्पना नहीं, ये वो आर्थिक सिद्धांत है जो क्वांटिटेटिव फाइनेंस को मुमकिन बनाता है।
बिल्कुल, गणित हवा में नहीं है, वो आर्थिक तर्क पर आधारित है।
ये वाला मुझे बहुत सोचने पे मजबूर करता है। किसी मॉडल की सीमाओं को समझना अक्सर ये समझने से ज्यादा जरूरी होता है कि वो काम कैसे करता है।
हाँ, ये हमें सावधान और विनम्र रहना सिखाता है। मॉडल भगवान नहीं है।
और ये सलाह भी अच्छी है, लक्ष्य परफेक्ट मॉडल खोजना नहीं बल्कि ऐसा मॉडल खोजना है जो आपके काम आए और आप उसकी कमियों को जानते हुए उसका इस्तेमाल करें।
एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच, हर समस्या के लिए सही टूल चुनना।
और कंप्यूटिंग के बारे में, कंप्यूटेशनल कुशलता सिर्फ तकनीकी बात नहीं, ये तय करती है कि कोई गणितीय मॉडल असल में इस्तेमाल हो भी सकता है या नहीं।
सही बात है, अगर मॉडल को चलाने में घंटों लगे तो वो ट्रेडिंग के लिए बेकार है।
और आखिर में वो रेप्लिकेशन वाली बात फिर से, डेरिवेटिव की कीमत इस बात से तय नहीं होती कि असल में स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने की कितनी संभावना है, बल्कि उस नकलची पोर्टफोलियो को बनाने की लागत से होती है जो हर हाल में डेरिवेटिव के भुगतान की बराबरी करे।
यही क्रक्स है, दिस इज द कोर आइडिया।
तो ये सारी थ्योरी, ये गणित, ये सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, इसका असल दुनिया में बहुत बड़ा इस्तेमाल है।
अरे बिल्कुल, खरबों डॉलर का जो ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट है वो इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। बैंकों में, इन्वेस्टमेंट फर्म्स में जो क्वांट्स काम करते हैं,
हाँ,
वो रोज इन मॉडलों का इस्तेमाल करते हैं नए प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए।
ट्रेडर्स भी इनका इस्तेमाल करते होंगे।
जरूर, वो ग्रीक्स डेल्टा, गामा, वेगा को देखकर अपने पोजीशन के रिस्क को समझते हैं, डेल्टा हेजिंग करते हैं ताकि मार्केट के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से बचा जा सके।
और रिस्क मैनेजर्स?
रिस्क मैनेजर्स पूरी फर्म के ओवरऑल मार्केट रिस्क को नापने के लिए इन मॉडलों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वैल्यू एट रिस्क, VR या स्ट्रेस टेस्टिंग, ये सब इन्हीं पर आधारित है।
और क्या ये कंपनियों के भी काम आते हैं?
हाँ बिल्कुल, सोचिए कोई भारतीय एक्सपोर्टर है जिसे डॉलर में पेमेंट मिलनी है, वो रुपए के मुकाबले डॉलर के गिरने के रिस्क से बचने के लिए करेंसी ऑप्शन या फ्यूचर्स खरीद सकता है।
अच्छा।
या कोई एयरलाइन कंपनी है, उसे हवाई जहाज के तेल ATF की कीमत बढ़ने का डर है, वो फ्यूचर्स या ऑप्शंस का इस्तेमाल करके उस रिस्क को हेज कर सकती है। इन सबकी कीमत इन्हीं गणितीय सिद्धांतों से तय होती है।
और 2008 के संकट के बाद तो रेगुलेटर्स के लिए भी ये समझना जरूरी हो गया है।
बिल्कुल, पूरी फाइनेंशियल सिस्टम की स्थिरता के लिए इन मॉडलों और उनके जोखिमों को समझना बहुत जरूरी है।
तो ये हम सबकी जिंदगी को भी छूता है, भले ही हमें पता ना चले। हमारे बैंक, पेंशन फंड, बीमा कंपनियां, उनकी सेहत इन चीजों पर निर्भर करती है।
हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, पर असर पड़ता है।
तो इस पूरी बातचीत के आखिर में आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा, सबसे मूल्यवान सबक?
मेरे लिए शायद यही कि फाइनेंस की दुनिया जो ऊपर से इतनी क्योटिक, इतनी बेतरतीब लगती है, उसके नीचे गणित के गहरे और सुरुचिपूर्ण नियम काम कर रहे हैं। और कीमत तय करना कोई अटकलबाजी या ओपिनियन का खेल नहीं, बल्कि नो आर्बिट्रेज के तर्क का नतीजा है।
मेरे लिए सबसे आश्चर्यजनक या पसंदीदा पहलू शायद वो रिस्क न्यूट्रल प्राइसिंग का आइडिया है। ये सोचना कि एक काल्पनिक दुनिया में जाके आप असली दुनिया की कीमत निकाल सकते हैं, ये गणित की ताकत दिखाता है। और साथ ही जोशी का बार बार मॉडल की सीमाओं पर जोर देना, ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए।
सही बात है, हमेशा क्रिटिकल नजर रखनी चाहिए।
और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग पावर बढ़ रही है, ये जटिल फाइनेंशियल मॉडल भविष्य में कैसे विकसित होंगे? क्या इनसे नए अवसर पैदा होंगे या फिर नए अनदेखे जोखिम सामने आएंगे? सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।